الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور ہم پیج نمبر 136 کے اوپر تھے سورہ یوسف کی تفسیر میں. ان آیات جو کہ ابھی تلاوت کی گئی، پہلی آیت تھی آیت نمبر 88. تو 88 سے 92 تک جو آیات ہیں ان کے ہم معارف مسائل آج پڑھ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں جو آخری بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ قد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے کہ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ سے یہ سوال ہے بطور کوئز یا ریویژن کے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ بیان ہوا تھا پچھلی کلاس کے اندر، وہ کیا تھا؟ کس کو یاد ہے؟ بالکل آخری آخری کیا نقطہ اس آیت کے تحت بیان ہو گیا تھا، اللہ نے کروا دیا تھا. جی، کسی کو یاد ہے؟ تو یاد ہے تو لکھیں، جب تک ہم آگے چلتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی تفسیر میں انہوں نے کیا لکھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان و کرم فرمایا کہ اول ہم دونوں کو صبر تقویٰ کی دو صفتیں عطا فرمائیں جو کلید کامیابی اور ہر مصیبت سے امان ہیں، پھر ہماری تکلیف کو راحت سے، افتراق کو اجتماع سے، مال و جاہ کی قلت کو ان سب کی کثرت سے تبدیل فرما دیا. ٹھیک ہے، تو تین باتیں ارشاد فرمائیں. پچھلی کلاس میں یہ بات ابھی ڈسکس نہیں ہوئی تھی، یہ تو ابھی ابھی کی بات ہے جو آج ہم نے کرنی ہے. پچھلی کلاس میں کیا بات ہوئی تھی وہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی نے لکھا ہوگا، اللہ کے بندے نے، تو وہ بتا سکے گا. اچھا، تو یہ جو تین باتیں فرمائی نا، تکلیف کو راحت سے، افتراق کو اجتماع سے، اور قلت کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا. تو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جو سورہ یوسف نازل ہوئی ہے وہ ہمارے اوپر تو نہیں نازل ہوئی ہے نا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں اور ان کے واسطے سے ہم سے خطاب فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سورہ یوسف کیوں نازل فرمائی تھی؟ شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی ایسے حالات آ رہے تھے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. الم یجد کا یتیم فآوا ووجدک والاً فہدا، اور ہم نے آپ کو وال پایا. وال کا مطلب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے گمراہ، کیونکہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے. تو والاً کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ابھی آپ کے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ ایگزیکٹلی آپ کا مقصد زندگی ہے کیا. एग्जैक्टली आपका मकसद जिंदगी क्या है ये अभी आपको नहीं बताया गया था, यानी शुरू में आपको नहीं बताया गया था, फिर हमने आपको बता दिया फहदा, ठीक है। और फिर तीसरी चीज क्या थी, वो ज्यादा का आयलन फगना, वो ज्यादा का आयलन आयलन फगना, हमने आपको कसीरुल आयाल पाया, यानी आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ था और आपके पास माल दौलत की तंगी थी, हमने आपको गनी कर दिया, हमने आपको गनी कर दिया, फअग़ना। तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को भी तीन तरीकों से नबी अलैहिस्सलाम की मदद फरमाते हैं और अपने कुरान मजीद में उसका इजहार भी फरमाते हैं, ठीक है ना, बाकायदा उसका जो है वो यानी मुकालमा भी फरमाते हैं, मुजाकरा भी फरमाते हैं कि ये किया हमने आपके साथ, ये किया हमने आपके साथ, ये किया हमने आपके साथ, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी अगर आप ओवरऑल समराइज करें कि इनकी जिंदगी में पहले क्या हालात थे और बाद में क्या हालात थे, वो भी ऐसे ही कमोबेश बनते हैं या तो फिट कर सकते हैं इन्हीं तीन किस्मों के अंदर, ठीक है। गनी कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और जो है वो नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो फिर वही से नवाजा और उनको एग्जैक्टली रास्ता दिखा दिया कि अब उन्होंने करना क्या है, ठीक है। तो ये तो एक नुक्ता हो गया। अभी पिछले वाले के बारे में क्या भाई, उन्होंने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हजरत बुनियामीन को भी, गरचे के वो इस आजमाइश से नहीं गुजरे जिससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे थे, ठीक है, अलहमदुल्ला, ठीक है, किसी को तो याद है, सही, अलहमदुल्ला। तो इन्होंने जो लिखा जवाब, यही इसका जवाब था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया, किन हमारे ऊपर, मुझ पर और मेरे भाई के ऊपर, ठीक है, अलै अलैया नहीं फरमाया, अलैया, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एहसान फरमाया, ठीक है ना, कि मुझे इतनी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, फिर मुझे जो है वो ये अता कर दिया, मुझे नबुवत अता कर दी, और मुझे हिकमत अता कर दी, और मुझे जो है वो बादशाही अता कर दी, और माल दौलत अता कर दी, और मर्तबा भी अता कर दिया, नहीं, अपने भाई को भी इसमें शामिल कर लिया, हालांकि भाई ने जो है वो ये सारी तफसीलात नहीं करी थी। हाँ, अपने वालिद साहब के घर में रहते हुए जो अपने सौतेले भाई थे, उन सौतेले भाइयों की जो आजमाइशें थी उनके ऊपर इन्होंने भी सबर किया था, भाई ने भी सबर किया था, ठीक है ना। तो इन दोनों के दरमियान मुश्तरक बात किया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुनियामीन के दरमियान मुश्तरक मेहनत किया है, सिर्फ एक, ठीक है ना, बल्कि दो कहना चाहिए, जो कि आगे जिक्र भी आ रहा है, जिसका दो मेहनतें हैं मुश्तरक हैं, ठीक है ना, वो क्या है, मैं यत्तकी वो यस्पिर, ये दोनों काम दोनों ने किए, तकवा बुनियामीन ने भी तकवा से काम लिया, गुनाहों के मुर्तकिब नहीं हुए, और यस्पिर के भाइयों की पहुंचाई हुई आजमाइश के ऊपर सबर किया, इन दोनों ने ये काम किया। बाकी जितने पढ़ने लिखने का काम, पढ़ने लिखने से मुराद ये है कि बड़ा मतलब आलिम फाजिल, और जो है वो हिकमत और दानाई, और जो है वो जेल जाना, और जो है वो ख्वाब की ताबीर बताना, और बादशाह सलामत के ऊपर जो है वो अपना जबरदस्त किस्म का इम्प्रेशन डालना, इबरानी जुबान और अरबी जुबान और दूसरी जुबानों के अंदर बात करके, ये सब मुश्तरक नहीं है बुनियामीन में और उनमें, ये सब सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो अता फरमाते हैं ना, वो दोनों तरीके से अता फरमाते हैं, एक तो होता है किसी के अंदर सलाहियतें होती हैं, किसी के अंदर जो है वो इल्म होता है, फजल होता है, उसको सबब बना करके अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमा देते हैं, इज्जत और मर्तबा अता फरमा देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तकवा और सबर को भी, तकवा और सबर जो कि हमारे नजदीक जो है ना ये इनटेंजिबल चीजें हैं, इनकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, इनकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, इनकी स्पिरिचुअल वैल्यू है, इनकी इनटेंजिबल वैल्यू है, ठीक है ना, नॉन फिजिकल वैल्यू है इनकी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इनकी भी वैल्यू है, जैसे कि दूसरे असबाब की वैल्यू होती है, बल्कि कहना तो ये चाहिए कि अल्लाह ताला के नजदीक इन चीजों की ज्यादा वैल्यू है दूसरे असबाब के मुकाबले में, ठीक है। तो ये नुक्ता था जो कि पिछली क्लास के अंदर और भी तफसील के साथ बात हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद यानी तफसीरन क्या फरमाया कि बेशक जो शख्स गुनाहों से बचता है और मसाइब पर सबर करता है तो अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने वालों का अजर जाया नहीं किया करते। इन्नी ला उजियु अमला आमिले मिनकुम मिन ज़कर व अंसा, है ना। किसी भी अमल करने वाले यानी नेक अमल करने वाले के चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हम उसके अमल को जाया नहीं करते। ला नुदीउ अमल आमिले मिनकुम, तुम में से मिन ज़कर औ अंसा, चाहे मर्द हो चाहे वो औरत हो। इसके अंदर तफरीक नहीं है मर्द और औरत के अंदर। नेकी का सवाब जो है वो मर्द को जितना मिलेगा औरत को भी उतना ही मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। ये मीरास नहीं है कि औरत को जो है वो आधा हिस्सा मिल रहा है और मर्द को जो है वो पूरा हिस्सा मिल रहा है, ये मीरास नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा मिलेगा। तो अल्लाह ताला अजर को जाया नहीं किया करते। अब तो बरादरान यूसुफ के पास, अच्छा एक और बात थी कि जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो मुसीबत का असल में दुनिया के अंदर मतलब क्या होता है? मुसीबत का दुनिया के अंदर जो आती है इसका मतलब ये होता है कि जो आसानी का जमाना है ना, आसानी का जमाना, इन्नमा अल उसरे युसरन, फइन्नमा अल उसरे युसरन, इन्नमा अल उसरे युसरा। ठीक है, सूरह अलम नशरा, ये भी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, वही अलम अलम करके। ठीक है ना, जिस तरह से क्या हमने आपको हमने हमने आपका सीना ही खोल दिया, जिस तरह से अभी सूरह वहा की 3 आयात आपके सामने पढ़ी ना, अलम यजिद का यतीम फआवा का, तो वहां पर भी अलम से बात शुरू हुई थी। उसी तरह से अलम नशरा, क्या हमने आपके सीनों को खोल नहीं दिया? ठीक है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फइन्ना मअल उसरे युसरा, तकलीफ के साथ उसर के साथ आसानी है। इन्ना मअल उसरे युसरा, तकलीफ के साथ आसानी है। क्या मतलब कि जब तकलीफ हमारे ऊपर आती है ना, तो उसके बाद फिर एक आसानी भी आती है। तो तकलीफ को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये आसानी में ताखीर को कहते हैं। आसानी
अच्छा
ताखीर, जो डिले हो रही है ना आपको आसानी पहुंचने में, इसी को तकलीफ कहते हैं, इसी को आजमाइश कहते हैं। ठीक है ना, इसी को मुसीबत कहते हैं। तो ये जो मुसीबत का वक्त है, ये जो ताखीरे आसानी का वक्त है, आसानी में ताखीर जो हो रही है, ये जो टाइम है ना, इस टाइम को हमने कैसे गुजारना है? इन्हीं दो चीजों से गुजारना है। एक तो सबर, कि जो मुसीबत का वक्त है इसके ऊपर हमने सबर करना है। ठीक है ना, यानी नाशुक्री नहीं करनी है और उल्टे सीधे जो है वो बात ही नहीं करनी है। और दूसरी चीज क्या है? तक्वा, कि हमने वी आर नॉट अलाउड टू रिजोर्ट टू क्रूकडनेस, क्रूकडनेस। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू रिजोर्ट टू क्रूकेडनेस, यानी गुनाह नहीं करना, टेढ़ा रास्ता इख्तियार नहीं करना, नाजायज रास्ता रास्ता इख्तियार नहीं करना। ठीक है, ये हमसे बहुत बड़ी एक भूल हो जाती है, खुसूसन दीनदार लोगों के साथ, क्योंकि दीनदार लोग उमूमी तौर पर उनको जायज और नाजायज का फर्क पता होता है, तारीफ पता होती है कि हाँ भाई ये हलाल है, ये चीज हराम है, ये चीज जायज है, ये चीज नाजायज है। ठीक है, तो यानी एक प्रॉपर रेगुलर दीनदार आदमी जो है वो इन चीजों को जानता है। ठीक है ना, लेकिन गलती क्या हो जाती है कि जब कोई मुसीबत पड़ती है ना, ठीक है, जब कोई मुश्किल पड़ती है, जब कोई आजमाइश पड़ती है, तो उस वक्त इस इल्म के ऊपर जमे रहना, कायम रहना कि जी मैंने जायज रास्ता ही इख्तियार करना है अपने जायज मकसद को हासिल करने के लिए, क्योंकि दीनदार इंसान वही होता है कि जिसका मकसद जायज होता है, जिसकी नीयत सही होती है। ठीक है, जो कि जायज मकासद हुसूल करने के लिए इस दुनिया की जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो अब वो क्या असबाब इख्तियार करे जायज मकसद को हासिल करने के लिए, ये आजमाइश होती है, ये आजमाइश होती है। और इस आजमाइश के अंदर पूरा उतरना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे ऊपर मुसीबत पड़ती है तो हम हुक वाले असबाब इख्तियार करने के साथ साथ क्रुक वाले असबाब भी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी का मुहावरा है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, बस मैंने अपना मकसद हासिल करना है। ठीक है ना, तो एक तो हो गया ना गंदा मकसद हासिल करना है, तो भाई गंदा मकसद हासिल करना तो क्रुक ही हो गया ना, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा क्रुक, क्योंकि आपका मकसद ही, आप जो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं ये क्रूक है, ये नाजायज चीज है। लेकिन दीनदार के साथ ऐसा नहीं होता, दीनदार को जो मकसद हासिल करना होता है वो जायज मकसद होता है, लेकिन जो वो उसके लिए रास्ता इख्तियार करता है ना, जो उसके लिए असबाब इख्तियार करता है, ये असबाब भी जायज ही होने चाहिए, ये असबाब नाजायज नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहां पर जो है ना, फिर शैतान हमसे भूल करवा देता है, बेसब्री करवा देता है, गलती करवा देता है। ठीक है, उसको पता है ना कि भाई ये दीनदार है ना, तो इनका मकसद तो है अच्छा, ठीक है ना, तो यहां पर मैं तो इनसे गड़बड़ करवा नहीं सका कि इनका मकसद ही बदलवा दूं, नाजायज करवा दूं इनका मकसद, वो तो मैं कर नहीं सका, तो चलो अब मैं जो हूं ना, मकसद को हासिल करने का जो रास्ता है ना, उसको नाजायज करवा देता हूं। ठीक है, तो अब हमारा घी जो है वो, हम हमारे काम जो है वो सीधी उंगलियों से नहीं निकल रहे होते, तो हम टेढ़ी उंगलियों से निकालना शुरू कर देते हैं, और जितना ज्यादा हम पाकिस्तान के करीब होते हैं उतना ज्यादा टेढ़ी उंगलियों से निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है वो इसके अंदर दुनिया के अंदर सबसे आगे है टेढ़ी तरीके से काम करना। ठीक है ना, उसको बहुत सारे नाम भी दिए गए हुए हैं कि भाई वो यानी जुगाड़ जुगाड़ का भी लफ्ज कोई इस्तेमाल करते हैं, कोई कोयल कोई कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बस हमने अपना मकसद हासिल करना है, अब जो भी तरीका इख्तियार करें उससे कोई हमें गर्ज नहीं। आगे फरमाते हैं कि बेशक जो शख्स तनाव से बचता और मसाइब पर सब्र करता है, यानी जो आजमाइश का टाइम होता है उसके अंदर वो तकवा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे नेक करने वालों का अजर जाया नहीं किया करता। ठीक है ना, अब हमें जो है ना, हम जब दीनदार हो जाते हैं तो हमें अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद हो जाती है, अजर की उम्मीद हो जाती है, लेकिन जब हम नाजायज तरीका इख्तियार करके फिर भी हम अजर की उम्मीद कर रहे होते हैं ना, तो ये फिर अजर की उम्मीद नहीं कहलाएगा, बल्कि ये अजर का डिमांड कहलाएगा। ठीक है ना, ए अल्लाह रास्ता तो मैंने गलत इख्तियार किया है, लेकिन मुझे अजर फिर भी चाहिए, यू बेटर गिव मी अजर, राइट, यू बेटर गिव मी अजर। ठीक है, क्योंकि मकसद तो मेरा सही था ना, तरीका मैंने गलत इख्तियार किया तो क्या हो गया, आपको फिर भी मुझे अजर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के साथ जो है ना, ये डिमांड्स नहीं चलती हैं, नाज नखरे नहीं चलते हैं। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि अब तो बरादरान यूसुफ के पास बजुज जुर्म व खता के एतराफ और यूसुफ अलैहिस्सलाम के फजलो कमाल के इकरार के चारा नहीं था, अब गुजारा नहीं था कि वो इकरार करें इस बात का, तो सब ने यक जुबान होकर कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम, लकद आसरक अल्लाह अलैना व इन कुन्ना लखातीन, तहकीक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हम पर, बखुदा अल्लाह ताला ने आपको हम पर फजीलत और बरतरी अता फरमाई और आप इसी के मुस्तहिक थे, और हमने जो कुछ किया बेशक हम उसमें खताबार थे, लिल्लाह माफ कर दीजिए, वह इन कुन्ना लखातीन की ये तफसीर बयान करी कि हम ही खतावार थे तो आप हमें माफ कर दीजिए, हालांकि माफ के अल्फाज यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किए गए, लेकिन जब कोई इंसान अपनी खता का इकरार करता है ना, तो खता का इकरार जो है ना, ये फिर माफी के जज्बे के साथ ही होता है, या होना चाहिए कम से कम, कोई ऐसा हो कि खता का इकरार भी कर रहा है लेकिन माफी भी नहीं मांग रहा, तो वो तो फिर वो दूसरा मसला होता है, फिर जिसको कहते हैं ना वो निडर और बेबाक और किस बिल्कुल कोई जो है ना वो ओके, हाँ मैंने कर लिया गलती, अब सो व्हाट, ये भी तो एक तरीका होता है ना, हाँ मैंने करी गलती, अब क्या कर लोगे मेरा, तो गलती का इकरार कर रहा है लेकिन माफी नहीं मांग रहा। ठीक है, माफी नहीं मांग रहा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उमूमी तौर पर एक सही शऊर रखने वाले और एक सही यानी फितरत रखने वाले इंसान, इस ये शख्स जब इकरार करता है तो माफी उसका हिस्सा होती है, उसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में अपनी पैगंबराना शान के मुताबिक फरमाया, ला तसरीब अलैकुम, ठीक है, तसरीब का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है कि किसी को ब्लेम ना करना, किसी को जो है ना वो ताने ना देना, किसी को जो है वो इल्जाम ना देना, सेंश्योर ना करना होता है, तो ला तसरीब अलैकुम यानी मैं तुमसे तुम्हारे मजालिम का इंतकाम तो क्या लेता, आज तुम पर कोई मलामत भी नहीं करता, मलामत भी नहीं करता तुमको। ठीक है, तो ये तो अपनी तरफ से माफी की खुशखबरी सुना दी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की, यग़फिरुल्लाहु लकुम वह हुआ अरहमुर राहिमीन, यानी अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को माफ फरमा दे, वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। ठीक है, तो ये थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, और ये थे ईमान वाले जो कि अल्लाह पर ईमान लाते थे। क्या मतलब? आज सुबह बड़ी तफसील के साथ ख्वातीन में बात हुई है, दोबारा पहले भी हो चुकी थी वैसे, लेकिन आज फिर बात हुई है कि अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये होता है कि वैसे अल्लाह को मानना, वैसे अल्लाह को जानना, ठीक है, वैसे अल्लाह के वजूद का इकरार करना, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाते थे जैसा याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको बताया था कि अल्लाह ऐसा है और ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मानते थे याकूब अलैहिस्सलाम की डेफिनेशन को अबाउट अल्लाह, या याकूब अलैहिस्सलाम की डिस्क्रिप्शन अबाउट अल्लाह सुब्हान ताला, ये उसको मानते थे। इसको कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाना, वरना अल्लाह ताला की वजूद का इकरार और अल्लाह ताला की कुछ सिफात का भी इकरार कर लेना, ये तो मुशरिक भी करते हैं, राइट। ये तो मुशरिकीन मक्का भी करते हैं, ये तो यहूद भी करते हैं, ये तो नसारा भी करते हैं, हत्ता कि ये तो हिंदू भी करते हैं, ठीक है। तो क्या वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हुए कि अल्लाह के वजूद का इकरार करते हैं, तो वो ईमान वाले कहलाएंगे अल्लाह पर ईमान लाने वाले? हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाने वाला सिर्फ वो कहलाएगा जो कि अल्लाह को वैसे इकरार करता है अल्लाह ताला के बारे में, सारी सिफात के बारे में अल्लाह ताला की, जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। और जो चीज नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात के खिलाफ है, वैसा अल्लाह ताला को वो नहीं मानता है, यानी वैसा नहीं जानते, कहता कि अल्लाह ताला वैसे भी हैं कि भाई उनकी बेटियां भी हैं, अल्लाह ताला के बेटे भी हैं, राइट। अल्लाह ताला नाउज बिल्ला जो है वो भूल भी जाते हैं, नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला से खता भी हो जाती है, अल्लाह ताला पूरा काम अपना अकेले नहीं कर सकते हैं, बल्कि हेल्पर्स की जरूरत होती है। तो जानता है अल्लाह ताला को कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है, अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है, लेकिन बाकी चीजों में गड़बड़ कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के खिलाफ जो है वो अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ईमान वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ईमान वाले थे। तो इनके बारे में ना, इनके वालिद मुहतरम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की शुरू में ही जहन साजी कर दी थी, बिल्कुल शुरू में ही। क्या फरमाया था जब इनके साथ वो ख्वाब वाला मामला हुआ था, तो उन्होंने क्या फरमाया था? याकूब अलैहिस्सलाम अपनी छोटी औलाद की जहन साजी कर रहे हैं। काला या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तक्सुस रुया का अला इखवतिका फकीदू लका कैदा, कि तुम अपने ख्वाब को अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ जो है ना वो प्लानिंग करेंगे। इन शैतान लिल इंसान अदूवुन मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे की जहन साजी करी थी, भाई नबुवत तो अल्लाह की तरफ से मिलेगी ना, लेकिन बाप का काम तो है ना तरबियत करना, फिर भी ये तो नहीं कि हाँ नबुवत मिलेगी अल्लाह ताला सिखा देंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं सिखाने की। ये भी तो याकूब अलैहिस्सलाम कह सकते थे ना, अल्लाह के नबी थे, इनको तो अंदाजा हो गया होगा कि हाँ मेरे बेटे को नबुवत मिलनी है, तो कहता है मुझे क्या सिखाने की जरूरत है, अल्लाह है ना सिखाने वाला, सिखा देगा। नहीं, अपना काम फिर भी कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं? शैतान याद दिला रहे हैं, और ये याद दिला रहे हैं कि देखो तुम भाइयों के दरमियान जो मसला होगा ना, ये शैतान की वजह से होगा, तो अपने दुश्मन को अगर तुम याद रखोगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा उसका मुकाबला करना, और अगर तुम अपने दुश्मन को भुला दोगे तो तुम यही समझोगे सारा गड़बड़, सारा मसला इन्होंने किया है, सारी बुराई इन भाइयों के अंदर ही है, यही शैतान है, तो अब जो है ना वो इनके साथ में वैसे ही बर्ताव करूं जैसे कि शैतान के साथ करना चाहिए। नहीं, ये शैतान नहीं है, शैतान तो अलग है, ठीक है, ये तो ईमान वाले हैं, ये तो तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। तो इतनी अच्छी जब तरबियत होती है ना, तो फिर जब बुरा वक्त आता है, फिर बुरा वक्त गुजर जाता है और फिर से अच्छा वक्त आ जाता है, तो उस वक्त माफ करना आसान हो जाता है, उस वक्त माफ करना आसान हो जाता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आसान हो गया। 40 साल से ज्यादा वक्त इन्होंने मुसीबतों के अंदर गुजारा अपने भाइयों की वजह से, राइट, भाइयों की वजह से, और उन भाइयों को कह रहे हैं ला तसरीब अलैकुम, और फिर कह रहे हैं यग़फिरुल्लाहु लना लकुम वला हुवा अरहमुर्राहिमीन, ठीक है। तो अब हम भी अगर तरबियत की नीयत से इस क्लास के अंदर आए हैं और ये सारी बातें अपनी तरबियत और अपनी इस्लाह और अपनी जहन साजी के लिए सुन रहे हैं, तो हम भी इस बात को याद रखें ना कि भाई दूसरों से जो गलती हो जाती है, अब वो दूसरे या तो शैतान को तो हमने माफ नहीं करना ना, शैतान को तो माफ नहीं करना, लेकिन क्या आपके भाई, आपकी बहन, आपके दूसरे रिश्तेदार, या आपकी बीवी, या आपका शौहर, क्योंकि औरतें भी इस क्लास के अंदर होती हैं, तो क्या आपका शौहर शैतान है? शैतान तो वो होता है जिसके अंदर, जिससे खैर की कोई उम्मीद नहीं होती। क्या शौहर शैतान है? क्या बीवी शैतान है कि उसकी गलती को आपने भूलना ही नहीं है? उसकी गलती को आपने भूलना ही नहीं है। पत्थर पे लिखा हुआ है अगले बंदे की गलती को, पत्थर के नकोश नहीं मिटते ना। आज भी 1,000 साल पुराना कोई पत्थर मिल जाता है, उसके ऊपर आज भी जो है ना वो नकोश लिखे हुए होते हैं। 1,000 तो क्या, 10,000 साल पुराने भी पत्थर जो है वो तलाश करके कहीं से निकाल लेते हैं। अभी उसके ऊपर जो है ना वो फलानी सिविलाइजेशन के और फलानी तहजीब के नकोश अभी भी मिल रहे हैं पत्थरों के ऊपर। तो पत्थर के ऊपर जो चीज लिख दी जाती है वो नहीं मिटती। तो हम इसी तरीके से ना दूसरों की गलतियों को, अच्छा हमारे साथ तो मसला ये है कि हमारा तो इल्म भी इतना नाकिस है और हम तो हैं भी जज्बात से मगलूब किस्म के इंसान, तो अक्सर तो हम दूसरों की गलतियां नहीं होती हैं लेकिन अपने कम इल्मी की वजह से और अपनी जज्बातियत की वजह से ना उनके इनोसेंट किस्म के किसी रिमार्क को, या उनके यानी बुरी नीयत से उन्होंने वो काम नहीं किया था, या उन्होंने वो काम किया भी नहीं था, लेकिन हम फिर भी उसको गलती गलती गलती, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, तूने गलत किया, तूने ये जुल्म किया, तूने वो, अल्लाह अल्लाह के बंदे, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसने तुम्हारे ऊपर जुल्म करना था, लेकिन हमारी कम इल्मी और जज्बातियत की वजह से हम तो जो गलतियां नहीं भी होती है ना उनको भी गलतियां डिक्लेयर कर देते हैं, उनको भी गलतियां डिक्लेयर कर देते हैं, राइट? और फिर उस गलती को पत्थर के ऊपर लिख देते हैं, यानी हमारा दिल पत्थर, हमारा दिल पत्थर, और उस पत्थर के ऊपर दूसरे की गलती लिख दी जाती है, लिख देते हैं हम अपने पत्थर दिल के ऊपर, और वो फिर कभी भी नहीं भूलती है, कभी भी नहीं मिटती है हमारे दिल के ऊपर से, वो नकूश सबत हो जाते हैं हमारे पत्थर दिल के ऊपर, राइट? तो अभी जुमे का बयान अगर किसी ने सुना, मतलब माशाल्लाह काफी लोगों ने सुना होगा, लेकिन याद जिसने रखा तो उसके अंदर एक छोटा सा वाकया, कहावत जिसको कहते हैं ना, एनेक्डोट किस्म का वाकया था ना, ये वो दोस्त जो है, दो दोस्त बड़े ही करीबी थे, वो कहीं सफर पे जा रहे थे, तो बीच में हो गई अनबन, हो जाती है भाई, शैतान तो लगा हुआ है कोशिशों के अंदर, हो गई, एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, अब उसके दिल के ऊपर चोट लगी, बड़ा उसको दुख हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है, उसने रेत के ऊपर लिखा, आज मेरे सबसे गहरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। फिर उसके बाद वो दोनों आगे चले, आगे जाके तालाब में जो है वो गर्मी हो रही थी, उन्होंने नहाने का फैसला किया, तो पता चला तालाब के अंदर दलदल थी, जिसने थप्पड़ मारा था वो तो बच गया, लेकिन दूसरा जो है ना जिसको थप्पड़ पड़ा था वो दलदल के अंदर फंस गया। अब थप्पड़ मारने वाले दोस्त ने अपने उस दोस्त को बचा लिया, दलदल से निकाल दिया खींच करके, तो अब इसने वहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ था उसके ऊपर लिखा, आज मेरे सबसे गहरे दोस्त ने मुझे बचाया, मेरी जान बचाई। अब वो हैरान, तुमने उस वक्त तो रेत के ऊपर लिखा था, अब तुम पत्थर के ऊपर लिख रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं चाहता था कि उस चीज को भूल जाऊं, जो हवा जो माफी की हवा चलेगी उससे वो नकूश मिट जाएंगे, लेकिन जो तुमने मेरे साथ अच्छाई करी है मैं नहीं चाहता कि ये बात भूलूं। ये होते हैं अच्छे लोग, ये वो लोग होते हैं कि जिनके दिल पत्थर के नहीं होते, जिनके दिल पत्थर के नहीं होते, और जिनके दिल पत्थर के होते हैं वो दूसरों की गलतियों को अपने पत्थर दिल के ऊपर नक्श कर लेते हैं। गलत कह रहा हूं? तो दूसरों की गलतियों को ना, और खुसूसा मतलब जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं यार, जो शैतान नहीं है, इंसान है, हाँ गलती के पुतले हैं, भूल चूक हो जाती है उनसे भी, वो भी जो है वो पैदाइशी तौर पे फरिश्ते के तौर पे पैदा नहीं हुए थे, इंसान पैदा हुए थे, और हो सकता है उनकी पुरानी जिंदगी जो है वो वैसे भी दीन से दूरी की जिंदगी थी, तो गलतियां करी उन्होंने अपनी जिंदगियों के अंदर, और अभी भी उनकी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई है, अभी भी गलती कर रहे होंगे, लेकिन हम इस तरीके से जो है ना वो उसके ऊपर डेरे डाल करके बैठ जाते हैं कि हमारे मशायख तक को कहना पड़ जाता है कि जब कभी झगड़ा होता है तो 20-20 साल की पुरानी गलतियां जो होती हैं सारी याद होती हैं, शादी से पहले तुमने ये किया था, शादी की रात को तुम्हारी माँ ने ये किया था, शादी के एक दिन के बाद तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ये किया था, और फिर तुमने ये कहा था, और फिर तुमने ये ऐसे नहीं किया था, फिर वैसे नहीं किया था, और उसके साथ तो तुम इतने अच्छे हो और मेरे साथ जो है तुम इतने खराब हो, और एक एक चीज जो है वो याद होती है, एक एक चीज याद होती है, किस बात की निशानदेही है ये, किस बात की निशानी है? कि हमने नक्श करके रखा हुआ है अपने दिल के ऊपर। तो हमारा दिल इसी काम के लिए, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कल्ब देकर के दुनिया में भेजा था, राइट। और कयामत के दिन इसी कल्ब को लेकर के हम अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होंगे कि जिसके अंदर दूसरों की गलतियां जो हैं वो नक्श होंगी, और उसकी वजह से ये जो नक्श है ये खाली ये नहीं कि बस उसके ऊपर नक्श निगार बने हुए हैं, बल्कि इस वजह से वो दिल कितना गंदा दिल है जो कि नफरत से भरा हुआ दिल है, राइट। दूसरों की गलतियों से भरा हुआ दिल है, कदूरत से भरा हुआ दिल है। ये दिल कैसे लेकर के अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे? तो गलतियों को भूल जाना चाहिए। अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि भूलने का मतलब क्या है? जी आप बता दें, गलतियों को भूल जाना चाहिए तो हमारा क्या जहन, ये जो याददाश्त है, ये अब आते हैं जरा सा अकल वकल की तरफ, है ना। अब तक तो दिल विल की बात हो रही है ना, दिल पत्थर है और दिल ऐसा है और दिल वैसा है, अब आते हैं जरा अकल के इस्तेमाल की तरफ। तो हमारा अकल, हमारी अकल, हमारा जहन, ये कोई कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर आपने पेंसिल से लिखा और फिर इरेजर से उसको मिटा दिया? क्या भूलना हमारे बस में है कि हम किसी चीज को भूल जाएं? तो फिर क्यों कहते हैं हमारे बुजुर्ग के भूल जाना चाहिए? ठीक है, क्यों कहते हैं हमारे बुजुर्ग भूल जाना चाहिए? व्हाट इज द फिजिकल रियलिटी ऑफ भूलना? माफ कर देना चाहिए। माफ तो कर भी देते हैं लेकिन फिर जो है ना वो दोबारा शुरू हो जाता है सारा का सारा, ठीक है। हाँ, डोंट ब्रिंग इट अप अगेन एंड अगेन। बेशक तुम्हें याद है, तुम भूल नहीं सकते हो, लेकिन उसका बार बार तस्करा मत करो, ताने मत दो, जलील और रुसवा मत करो। बेशक तुम्हें याद है, तुम नहीं भूल सके हो, लेकिन भूलने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि तुम अपने माइंड से इरेज कर दो उसको इरेजर के जरिए से, बल्कि अब जब नेक्स्ट टाइम मौका ऐसा आएगा जबकि तुम उसको बयान कर सकते हो, नहीं रुक जाओ, बयान मत करो इस बात को, ठीक है। गलतियों को बार बार याद करके अपने आप को और दूसरों को तकलीफ नहीं दें, दिल से माफ कर दें। हाँ, इसको हमारे मुहावरे में दिल से माफ करना भी कहते हैं, ठीक है। हम तो क्या करें, यानी अब हमें तो जस्टिफिकेशन चाहिए होती है ना, मतलब बदतमीजी करते हैं, अब दूसरे को दलील करते हैं, दूसरे को जो है वो इल्जाम देते हैं और सब कुछ करते हैं, और फिर जाहिर है फिर उसके लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है हमारे पास। जस्टिफाई कर करके अगले बंदे को इल्जाम दे रहे होते हैं, अगले बंदे को याद दिला रहे होते हैं उसकी सारी गलतियां जो थी या नहीं थी, जो हमने बनाई हुई है वो भी और जो उसने करी थी वो भी। तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या है भाई? जस्टिफिकेशन तो कोई भी किसी काम के लिए बना लेता है, राइट। अब वो उसकी मिसालें जो है वो एक से एक हमारे मशायख भी बयान करते हैं जस्टिफिकेशन अपने काम की, ठीक है। ये बुरे अखलाक होते हैं ना, ये बुरी चीजें होती हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए ना। जब हम अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें और लोगों के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो इस तरह का एटीट्यूड होगा घरों के अंदर, मियाँ बीवी के दरमियान, तो फिर कहाँ से मोहब्बतें आएंगी, कहाँ से उल्फतें आएंगी? जाहिर है नफरतें होंगी, और जब नफरतें होंगी तो नफरतें तो फिर ट्रांसफर होती हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन भी ये ट्रांसफर हो रही होती है और उनके असरात हो रहे होते हैं। आज तो किसी ने एक अफ्रीका के स्कूलों के हालात भेजे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो उसके अंदर यानी बहुत सारी बुराइयां स्कूलों की, और तो हम आपके सामने कहते भी रहते हैं, लेकिन एक बुराई जो उसके अंदर थी ना वो इतनी इससे यानी इस बात से रिलेटेड थी, इस बात से रिलेटेड थी कि माँ बाप के दरमियान जो इस किस्म के मसले मसाइल है ना, तो उनका असर जो है वो स्कूलों के अंदर जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनके ऊपर कैसे कैसे हो रहा होता है, ठीक है। इंतहाई यानी बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का असर हो रहा होता है इसके ऊपर। अच्छा, आगे फरमाते हैं, अहकाम व हिदायात, क्या लिखा है, जैसे यूसुफ अलैहि सलाम ने किया इसका तस्करा नहीं किया भाई से। जी बिल्कुल, जी तो पढ़ रहे हैं, तो अहकाम हिदायात के नहीं सॉरी एक पैराग्राफ रह गया था कि फिर फरमाया इज़हबू बिकमीसी हादा फअल्कूहु अला वजही अबी याति बसीरा वातूनी बिअहलिकुम अजमाईन। यानी मेरा एक कुर्ता ले जाओ और उसको मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, इससे उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी, जिससे वो यहाँ तशरीफ ला सकेंगे, और अपने बाकी घर वालों को भी मेरे सबको मेरे पास ले आओ, ताकि सब मिले और खुश हों और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से फायदा उठाएं और शुक्रगुजार हों। हालांकि ये वाली जो आयत है ना, ये तो आगे आएगी, ये तो अभी हमने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने इसको जरूरी समझा कि यहीं पर इस आयत को यानी मुकदम करके जो है वो बयान करते हैं इसका तफसीर, क्योंकि बात मुकम्मल करने के लिए इस आयत का तस्करा भी जरूरी समझा जाता है। अब इनमें अहकाम और हदायात फरमाते हैं कि आयात मस्कुरा से बहुत से अहकाम और मसाइल और इंसानी जिंदगी के लिए अहम हदायात हासिल हुई। अव्वल लफ्ज़ तसद्दक अलैना, तो उससे ये सवाल पैदा होता है कि बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम औलाद अंबिया हैं, उनके लिए सदका खैरात कैसे हलाल था? दूसरे, अगर सबका हलाल भी हो तो सवाल करना कैसे जायज था उनके लिए, क्योंकि सवाल करना भी बहुत बुरी चीज होती है कि हमारे ऊपर सदका कर दो, ठीक है, बाकायदा कयामत के अजाब का जिक्र है कि जो है वो मांगता है सवाल करता है तो कयामत के दिन उसका चेहरा ऐसा होगा कि उसके ऊपर गोश नहीं होगा, इस किस्म के है ना वही दे। तो फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो ऐसा काम क्यों कर रही है, ठीक है। अब देखें, बुरा काम तो इन्होंने किया था अपने भाई के साथ, लेकिन हर काम इनका बुरा नहीं था कि गोया के अब जब इन्होंने एक बुरा काम कर लिया तो अब जो है वो हर बुरा काम इनके लिए कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा नहीं होता। ईमान वाले जो है ना, वो उनसे कोई एक गुना या दो गुना या तीन गुना हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर काम ही गुना कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इनके लिए कह रहे हैं ना कि भाई इनके लिए कहां से जायज हो गया, अब इनके प्रूफ कर रहे हैं कि इन्होंने कोई नाजायज काम किया ही नहीं यहां पर, ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई ये तो आदि मुजरिम थे, ये तो आदि गुनाहगार थे, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हुई अगर उन्होंने भीख भी मांगनी यहाँ पे आकर के, ये नहीं कह रहे, ठीक है। क्योंकि ईमान वाले का मामला ये होता है कि उससे गलती कोताही हो जाती है, लेकिन उससे नेकियां भी हो रही होती है, ठीक है, और गलतियों से बच भी रहा होता है। तो दूसरे, अगर सबका हलाल भी हो तो दूसरे अगर सबका हलाल भी हो तो सवाल करना कैसे जायज था उनके लिए? तो बरादरान यूसुफ अगर अंबिया भी ना हो तो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, उन्होंने इस गलती पर क्यों मुतनब्बे फरमाया? देखिए, पैगंबर के पहले भी बात हो चुकी होती है और हम तो रिपीट करते हैं, वैसे कुछ लोगों को जरा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, क्यों रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई वज़क्कर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, तो ये तो उसूल जो है ना वो हमारे लिए एक शरई राह है, रिपीट तो करना पड़ेगा। तो नबी का मनसब है कि वो इस्लाह करे और वो गलत बात के ऊपर खामोश ना रहे, और उसके ऊपर जब नबी के पास जब दुनियावी अथॉरिटी भी आ जाती है, सल्तनत भी आ जाती है, मुमलिकत भी आ जाती है, यानी सुल्तान आ जाता है नबी के पास, तो अब तो और भी ज्यादा ये चीज उसके ऊपर लाजिम हो जाती है कि वो गलती के ऊपर तंबीह करे, रोके उसको, बाय फोर्स रोके उसको, अगर यानी जुबानी तौर पर अगर नहीं रुक रही है तो सबसे ऊंचा दर्जा क्या है, अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का, अपने हाथ से रोको उस गलती को, ठीक है। तो नबी नहीं करेगा तो और कौन करेगा ये वाला काम? तो फरमाया कि नहीं, इन्होंने अगर मुतनब्बन नहीं फरमाया ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई और तफसील है, कुछ तफसील है इसके अंदर। यही बात जो है वो हम बच्चों की क्लास के अंदर भी, जो कि एक्चुअली माशाल्लाह बच्चों से ज्यादा तो लगता है आजकल बड़े ले रहे हैं वाली क्लास सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमने वो वाली जो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी बिल्कुल वक्त में 4 दिन पहले पैदा फरमा जाने से, तकरीबन शायद 5-4 दिन पहले की बात है, कि सहाबा कराम कमरे के अंदर मौजूद थे और फरमाया कि मुझे एक कागज कलम और दवात ला दो, मैं एक तहरीर लिखवा दूं जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे, जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप तकलीफ में हैं, हमें इस तहरीर की जरूरत नहीं है, हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है, हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने तंबीह नहीं फरमाई, उमर करो, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया। हालांकि सहाबा के ग्रोह के अंदर वहां पे जितने मौजूद थे उनमें दो ग्रोह बन गए, एक जो है वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ताईद में थे कि हाँ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो फरमाने बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बाकी जो थे कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जिस हालत में भी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कोई गलत बात नहीं निकलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिल्कुल सही बात कहेंगे, गलत बात कहेंगे नहीं। उनकी बात समझ में नहीं आई कि नबी अलैहिस्सलाम असल में चाह क्या रहे हैं, उन्होंने मुखालफत करी, भाई किसी के बात समझ में नहीं आ रही हो और वो हक का ही साथ दे, तो जिस बात को वो हक समझता है तो उसके ऊपर वो मुखालफत करेगा गलत बात की, ये कोई नई बात तो नहीं है, कोई बुरी बात तो नहीं है। तो उन आधे सहाबा कराम ने भी सही काम किया और इन आधे सहाबा कराम ने भी सही काम किया जिन्होंने उमर रतान को सपोर्ट किया। असल बात यहां पर क्या करने की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ना उनको तंबीह फरमाई, नबी अलैहिस्सलाम ने ना इनको तंबीह फरमाई, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग यहां से निकल जाओ, तुम शोर कर लो, शोर करने के ऊपर तंबीह फरमा दी, निकल जाओ इधर से, शोर कर रहे हो। तो नबुवत का तकाजा क्या होता है, अगर वो नबी की बात नहीं मान रहे जो कि अल्लाह की तरफ से होती है, नबी अलैहिस्सलाम की बात क्या है, वमा यल्फ अनिल हवा, क्या है वो सूरह नजम क्या है, तो नबी तो अपने ख्वाहिश से बात नहीं करता ना, तो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं और तुम मेरा हुक्म नहीं मान रहे, ये
आज तो लच्छा दूध खाई
गुनाह
आया।
है, ठीक है। तो उसके ऊपर तंबीह करना ये नबी की जिम्मेदारी है, और नबी के पास बाकायदा सल्तनत है, नबी अलैहिस्सलाम अमीर हैं इस पूरी की पूरी रियासत मदीना के, और नहीं फरमा रहे हैं तंबीह। तो अब फुकहाए कराम जिनको अल्लाह ताला ने समझ और गहराई अता फरमाई है, उन्होंने इससे ये अखज किया कि ये हुक्म जो था ना ये वजूबी हुक्म था ही नहीं, ये वजूब था ही नहीं, या तो ये इस्तेहबाबी हुक्म था, क्या अभी कर लोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, या ये कि नबी अलैहिस्सलाम टेस्ट कर रहे थे सहाबा कराम को, और उसके ऊपर तफसील से सीरत क्लास के अंदर बात हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर भी यही हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्यों तंबीह नहीं फरमाई, ठीक है। तो इसका एक वाज़ह जवाब तो ये है कि यहाँ लफ्ज सदके से हकीकी सदका मुराद नहीं है, बल्कि मुआमले में रियायत करने को सदका सदका खैरात करने से ताबीर कर दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त गले का सवाल तो उन्होंने किया ही नहीं था, इन हुआ इल्ला वाह, नहीं, आपने गलत आयत नकल कर दिए, बार बार ये जिक्र होती है वो वाली आयत, तो फिर बहरहाल तो बिल्कुल मुफ्त गले का तो उन्होंने सवाल ही नहीं किया था, बल्कि कुछ निकम्मी चीजें पेश की थी, और दरख्वास्त का हासिल यह था कि इन कम कीमत की चीजों को रियायत करके कबूल फरमा लें। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि औलाद अंबिया के लिए सदका व खैरात की हुरमत सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस हो, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये वाली आयत कि नबी अलैहिस्सलाम जो भी नुतुक फरमाते हैं ना, जो भी फरमाते हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं फरमाते, ठीक है। तो ये दलील थी बाकी सहाबा के पास कि भाई लेकर क्यों कागज पेंसिल, नबी अलैहिस्सलाम अपने हवा से कोई थोड़ी बात फरमाते हैं, ठीक है। तो वो भी दलील थी, ये भी दलील थी, ठीक है। अच्छा, कुरान हमारे पास है, जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए कि हमारे पास अल्लाह का कुरान है, तो अल्लाह का कुरान उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास डायरेक्टली आया था, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नाजिल फरमाया था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर, कि वो गोया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई एक स्पेशल अचीवमेंट थी कि भाई कुरान है मेरे पास, नहीं, वो कुरान जो सारा का सारा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था, जिसके बारे में फरमा रहे थे कि हम गुमराह, हमारे पास जो है वो कुरान मौजूद है, तो वो कहाँ से आया था, वो भी तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से आया था सारा का सारा, ठीक है ना। और उसी कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला का हुक्म का ये ऐलान भी था कि अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया, ठीक है। तो अब जो नबी अलैहिस्सलाम गुमराही की बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट ए टेस्ट, ये सिर्फ हमें आजमा रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए, हमारे कॉन्सेप्ट्स हिदायत और गुमराही के बारे में क्लियर हुए हैं कि नहीं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु को अल्लाह ताला ने ऐसी फरासत अता फरमाई थी कि वो फौरन भाप गए इस बात, फौरन भाप गए, और बाकी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया उनसे भी यही गुमान है कि वो भी बाकी समझ गए होंगे, ठीक है। वरना आशिक आशिक सादिक नबी अलैहिस्सलाम के इशारों के ऊपर मर मिटने वाले तो सारे के सारे थे, ठीक है। बहरहाल ये तो वाली तफसील हो गई है, किसी को अगर मजीद सुनना हो तो सीरत क्लास का रिकॉर्डिंग सुन लिया करेगा। एनीवे anyway, तो आगे फरमाते हैं, अच्छा क्लास का टाइम कितना हो गया, 2 मिनट ऊपर हो गए, तो फरमाया कि औलाद अंबिया के लिए सदका खैरात में सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस हो, जैसे कि आयमा तफसीर में से मुजाहिद रहमतुल्लाह का यही कौल है। और फिर आगे इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन की जो आयत है, इसमें फिर एक और नुक्ता है जो कि जाहिर अब टाइम मुकम्मल हो गया है, तो अगली क्लास के अंदर अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह आपके सामने बयान फरमाएंगे। खुदा तआला से दुआ है कि बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सब की गलतियों को तहियों को माफ़ फरमाए, और आइंदा आने वाली जिंदगी को हमारी गुजरी हुई जिंदगी के लिए कफारा बनाए। आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।